चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरी एक और कहानी लेकर, जिसका नाम है मौत की घड़ी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक और अपना सजेशन ज़रूर देंगे। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं मौत की घड़ी। उस रोज क्लब में पता नहीं कैसे वार्तालाप का विषय भूत प्रेतों तथा अप्राकृतिक असाधारण कार्यकलापों की तरफ मुड़ गया। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर आदमी के पास एक ऐसी कहानी थी जो भूत प्रेतों के अस्तित्व और उनके अमानवीय कार्यकलापों से ताल्लुक रखती थी। हर किसी ने बताया कि उनके गांव में या उनके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के दोस्त के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी कोई भौतिक व्याख्या संभव नहीं थी, जो अलौकिक थी और जो किसी अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की तरफ संकेत करती थी। किसी ने खुद अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा? अमिठिया ने प्रश्न किया। अमिठिया पुलिस में इंस्पेक्टर था। किसी ने उत्तर नहीं दिया। यही तो रोना है, अमिठिया बोला। हमेशा ही सुनी सुनाई बातों के दम पर ऐसी बातों के अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसी ने अपनी आंखों से तो कुछ देखा होता। मैं तो भूत प्रेतों की कथित लीलाओं में विश्वास नहीं रखता। मैं भी नहीं, मैं बोला। मेरे ख्याल से यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा, अमिठिया बोला, जिसने कभी कोई असाधारण अलौकिक कृत्य अपनी आंखों से देखा हो या ऐसी कोई बात उसने किसी ऐसे शख्स से सुनी हो जिस पर कि वो शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। मेरी दाई और प्रोफेसर वाजपेयी बैठा हुआ था। उसने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला, पिछली गर्मियों में एक ऐसी घटना घटी थी जो मेरी जानकारी में है और जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। कोई अलौकिक घटना? अमिठिया ने पूछा। या तो वो अलौकिक घटना ही थी या तो फिर वो एक ऐसा इत्तेफाक था जिसे कि साधारण स्थितियों में असंभव की ही संज्ञा दी जा सकती थी। ऐसा क्या हुआ था? डॉक्टर गोस्वामी ने उत्सुक भाव से पूछा। मैंने एक आदमी को अपने एक रिश्तेदार की मौत की कामना करते देखा और सचमुच उसका रिश्तेदार मर गया। नॉनसेंस, अमिठिया मुंह बिगाड़कर बोला। यानी कि, मैं बोला, उस आदमी ने कहा कि उसके रिश्तेदार को मौत आ जाए और उसे तुरंत मौत आ गई। जी हाँ, प्रोफेसर वाजपेयी बोला। कमाल है, डॉक्टर गोस्वामी मंत्र मुग्ध स्वर में बोला। किस्सा क्या है? उत्तर में प्रोफेसर वाजपेयी ने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। पिछली गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए मैं भोपाल के समीप स्थित एक गांव में गया था। वहां मेरा गायकवाड़ नाम का एक दोस्त रहता था जिसके वहां मैं ठहरा था। गायकवाड़ विधुर था और उस गांव में अकेला रहता था। वहां उसका पोल्ट्री फार्म था और उसकी कमाई से वो इत्मीनान की जिंदगी जी रहा था। गायकवाड़ का मकान जिस सड़क पर था वो उस सड़क का आखिरी मकान था, और उस मकान की जो सबसे करीब इमारत थी वो कोई 100 गज दूर थी। वो पुराने जमाने की हवेलियों जैसी इमारत थी और उसका स्वामी उस इलाके में राजा साहब के नाम से जाना जाता था। राजा साहब लगभग 60 साल के बड़ी बड़ी मूछों वाले रोबदार व्यक्ति थे और उस इलाके के और आसपास के इलाकों के भी सबसे रईस आदमी माने जाते थे। मैंने राजा साहब को केवल एक बार देखा था। वो सामंत शाही प्रवृत्ति के बड़े फूफा वाले आदमी थे। वो अपने को वक्त का बड़ा पाबंद बताते थे और इसके सबूत के तौर पर हमेशा पास 2 घड़ियां रखते थे, एक कलाई घड़ी जो कभी उनकी कलाई से अलग नहीं होती थी और एक पॉकेट वॉच जो सोने की जंजीर के साथ लटकी हुई उनके बंद गले की कोट की जेब से लटकती रहती थी। मुझे गायकवाड़ उनके घर लेकर गया, तभी मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे सामने उन्होंने अपनी पॉकेट वॉच निकाली थी, उसमें समय देखा था, समय का मिलान अपनी कलाई घड़ी से किया था और फिर बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाने लगे थे। उनकी पॉकेट वॉच बड़ी अनोखी थी, उसमें समय देखा जा सकता था और सुना भी जा सकता था। घड़ी में एक बटन दबाने पर टन टन की आवाज के साथ पहले घंटे बजने लगते थे और फिर एक विभिन्न स्वर में टन टन होने लगती थी। दूसरी टन टन में एक टन का मतलब 5 मिनट होता था। मैंने उनसे मजाक में पूछा भी था कि वो 2 घड़ियां क्यों रखते थे। उत्तर में राजा साहब बड़ी गंभीरता से बोले थे, टाइम इज मनी सर, वक्त दौलत होता है और दोनों ही मामलों में मुझे अपनी स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी घड़ियों को एकदम दुरुस्त रखता हूं और खातों को एकदम चौक चौबंद। तभी वहां एक बिजली वाला पहुंचा, उसने पहली मंजिल की राहदारी में कोई बत्ती लगाने की बात की। जरूरत नहीं, राजा साहब बोले, वहां बत्ती की जरूरत मेरा भतीजा किशोर महसूस करता था, वही कहता था कि वहां बत्ती होनी चाहिए, लेकिन वो वापस शहर चला गया है, मुझे उस बत्ती की जरूरत नहीं है, अंधेरा हो जाने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूँ और फिर अगले ही दिन वहां से निकलता हूँ, जब किशोर वापस आएगा तो देखा जाएगा। बिजली वाला चला गया। मुझे अनुभव हुआ कि राजा साहब बड़े कंजूस आदमी थे। बाद में राजा साहब की कंजूसी की पुष्टि गायकवाड़ ने भी की। गायकवाड़ ने बताया कि उन्होंने शादी भी इसलिए नहीं की थी कि उन्हें बीवी का भार न संभालना पड़े। मैंने कहा उनके घर में नौकरानी भी तो आती थी, फिर वो पुरानी कहावत कि बीवी नौकरानी से सस्ती पड़ती है, और फिर वे अपने भतीजे को भी अपने साथ रखे हुए थे। उत्तर में गायकवाड़ ने बताया कि नौकरानी मालती नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसे वो बहुत कम पैसे देते थे और वो इतनी निकम्मी थी कि कोई उसे रखने को तैयार ही नहीं था, वो एकदम बहरी थी और मुझे ठौर नहीं तुम्हें और नहीं के अंदाज से वहां नौकरी करती थी। और जहां तक किशोर का सवाल है, गायकवाड़ ने बताया बूढ़ा उसे एक काले पैसे की शक्ल नहीं दिखाता। अब तो उसकी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है और वो 4 पैसे कमाने लगा है। पहले बूढ़ा उसे इतने पैसे भी नहीं देता था कि वो कभी जाकर सिनेमा भी देखा था। ऐसे आदमी को दफा क्यों नहीं करता किशोर, मैंने पूछा। कैसे करे, गायकवाड़ हाथ फैलाकर बोला, वो बूढ़े का इकलौता वारिस है, बूढ़े की सारी दौलत अंत में उसे ही मिलनी है, इसलिए वो बूढ़े की सेवा करता रहता है और उसकी लीचड़पन की आदतें बर्दाश्त करता रहता है। कुछ दिन बाद मुझे किशोर से भी मिलने का अवसर मिला। वो कुछ दिन की छुट्टी पर गांव लौटा था। किशोर मुझे बड़ा भला और शांत स्वभाव का नौजवान लगा। मेरी लगभग फौरन ही उससे घनिष्ठता हो गई और हम दोनों इकट्ठे घूमने फिरने लगे। अक्सर हम मछली पकड़ने की खातिर घंटों नदी किनारे बैठे रहते थे या जंगलों में टहलते रहते थे। किशोर के पास एक राइफल थी जिससे वो फाकताओं और बुरगाबियों का शिकार किया करता था। अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल वो हमेशा गायकवाड़ के घर पर रखता था। बूढ़े की निगाह में मछली पकड़ना नाकारे आदमी का काम था और वो इस वजह से किशोर की अच्छी खबर भी ले सकता था। और राइफलबाजी की मुलाकफत में जो सबसे बड़ी बात बूढ़ा कह सकता था वो यह थी कि कारतूस बड़े महंगे आते हैं और उसे इस प्रकार उजाड़ना फिजूल खर्ची थी। एक शाम को जब हम गायकवाड़ के घर में बरामदे में बैठे बियर पी रहे थे तो बातों बातों में राजा साहब का जिक्र आ गया। बुनियादी तौर पर मेरा चाचा भला आदमी है, किशोर ने बताया। दौलत का मोह उसे इसलिए है क्योंकि इससे उसे सत्ता और प्रभुत्व की अनुभूति होती है। उसकी कंजूसी मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि अपनी कंजूसी की वजह से वो जितना ज्यादा धन बचाए रखेगा उतना ही ज्यादा मुझे विरासत में मिलेगा। मुझे परेशानी होती है उनकी सनक भरी आदतों से। उसकी हर काम एक बंधाए नियम के अनुसार करने की जिद से, और उन नियमों का वो खुद ही गुलाम नहीं बना हुआ बल्कि हर किसी पर उसे लादने की कोशिश करता है। रात का खाना वो अंधेरा होने से पहले खा लेता है और फिर अंधेरा होने तक अखबार पढ़ता रहता है। फिर वो अपनी कलाई खड़ी देखता है और यूं सिर हिलाता है जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि इतना वक्त हो चुका था। फिर वो अपनी पॉकेट वॉच निकालता है, उसके समय पर मिलान कलाई खड़ी के समय से करता है, लेकिन वक्त के मामले में उसकी फिर भी तसल्ली नहीं होती। वो नीचे आता है और नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ी में वक्त देखता है और फिर उस घड़ी के अनुसार अपनी दोनों घड़ियों में वक्त ठीक करता है। घड़ियों के साथ इतनी सिर खपाई कर चुकने के बाद ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है और ठीक 15 मिनट बाद मुझे ऊपर बुलाता है। मैं ऊपर जाता हूँ और उसे बिस्तर के हवाले पाता हूँ। फिर उसके हुक्म के मुताबिक मैं खिड़की खोलता हूँ, जो कि वो हमेशा कहता है कि वो खिड़की खोलना भूल गया था। खिड़की इतने हिसाब से खोलनी होती है कि तौबा, अगर मैं खिड़की जरा सी ज़्यादा खोल देता हूँ तो शिकायत करता है कि उसे ठंड लग जाएगी। अगर मैं खिड़की ज़्यादा कम खोलूँ तो कहता है कि उसका दम घुट जाएगा। अंत में जब मैं उसकी पसंद के मुताबिक खिड़की खोल चुका होता हूँ तो मुझे हुक्म होता है कि मैं उसके कोट की जेब से उसकी पॉकेट वॉच निकाल कर लाऊं। मैं पॉकेट वॉच लाकर उसके पलंग की बगल में बड़ी मेज पर रख देता हूँ, तब जाकर मुझे छुट्टी मिलती है। ये बुजुर्गवार की सालों की रूटीन है जिसमें एक बार भी कभी कोई व्यवधान नहीं आया। जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ तो पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन मेरे लौटते ही ये तमाम हरकतें मशीन की तरह मुझे दोहरानी पड़ती हैं। रविवार को किशोर वापस जाने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि शनिवार को सारा दिन वो हमारे साथ गुजारेगा, लेकिन दिन में उसकी सूरत दिखाई न दी। रात हो जाने के बाद वो आया। पूछे जाने पर उसने बड़े क्रोधित भाव से बताया कि उसका चाचा सारा दिन उटपटांग कामों के लिए उसे इधर उधर भगाता रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उसने मुझे कार तक नहीं ले जाने दी कि मैं अपनी तफरी के लिए कहीं और न चल दूं और उसका फालतू पेट्रोल खर्च न हो जाए। हमने किसी प्रकार उसका गुस्सा ठंडा किया, फिर बियर के दौड़ चले और वातावरण में हल्कापन आ गया था। रात के 11:30 बजे तो किशोर उठ खड़ा हुआ। क्योंकि अगले दिन वो जा रहा था, इसलिए उसे अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल भी ले ली। मुझे लगा कि किशोर एकाएक भावुक उठा था और उसका वहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आए, एकाएक गायकवाड़ बोला। किशोर के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभरे, उसने सहमति में सिर हिलाया। हम तीनों बाहर निकले और धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर चलने लगे। किशोर के अपने एक कंधे पर राइफल रखी हुई थी और दूसरे पर मछली पकड़ने वाली बंसी। मैंने उसे कहा कि राइफल मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बदले में मुझे मछली पकड़ने वाली बंसी थमा दी। हम चुपचाप चलते उसके चाचा की हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। एकाएक किशोर ने अनुभव किया कि शायद मैं राइफल न थमाई जाने की वजह से बुरा मान गया था। वो खेदपूर्ण स्वर में बोला, वाजपेयी साहब, दरअसल मुझे इस राइफल से बहुत मोहब्बत है, इसलिए। नेवर माइंड, मैं बोला, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी फौजी हो, राइफल तुम्हें ही शोभा देती है। वो मुस्कुराया, उसने यूं प्यार से राइफल का कुंदा थपथपाया जैसे वो उसकी औलाद का दर्जा रखती है। फिर उसने कुंदे को अपने कंधे से टिकाया और उसे फायर करने की पोजीशन में ले आया। गोली मत दाग देना, गायकवाड़ हंसता हुआ बोला, गोली की आवाज सुनकर तुम्हारा चाचा नींद से जाग जाएगा। जहनुम में जाए चाचा, किशोर भन्नाए स्वर में बोला, और इससे पहले कि हम उसे रोक पाते उसने राइफल का घोड़ा खींच दिया। आधी रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज घन गर्जन की तरह गूंजी। मैं और गायकवाड़ स्तब्ध खड़े रह गए। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी भड़ाक से खिड़की खुलेगी और फिर हमें जवाब तलबी करती राजा साहब की क्रोधित आवाजें सुनाई देगी। हम तीनों सक पकाकर बच्चों की तरह दीवार के साए में दुबक गए। हम कितनी देर स्तब्ध खड़े प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब तक कुछ भी न हुआ तो हम ओट से निकल आए। अब जाकर सो, किशोर, गायकवाड़ बोला, लगता है तुम्हें बियर चढ़ गई है। शायद, किशोर धीरे से बोला। उसने आगे बढ़कर हवेली का फाटक खोला। भीतर दाखिल होने से पहले वो ठिठका, हमारी तरफ घूमा और फुसफुसाता हुआ बोला, जरा एक मिनट जाना नहीं, मेरे पास दरवाजे की चाबी नहीं है, और पता नहीं मेरा चाचा गुस्से में दरवाजा खोलेगा या नहीं। हमने सहमति में सिर हिलाया। वो फाटक के भीतर दाखिल हुआ और राहदारी पर आगे बढ़ा। हम उसे हवेली के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हुए देखते रहे। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एकाएक किशोर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, हिचका, रुका, फिर एकाएक घूमा और लंबे लंबे डग भरता हुआ हमारे पास पहुंचा। गायकवाड़, वो फुसफुसाता हुआ बोला, क्या आज की रात तुम मुझे अपने यहां रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गायकवाड़ बोला। क्या दरवाजा बंद था? उसने तुरंत उत्तर न दिया। हम तीनों गायकवाड़ की घर की तरफ चलने लगे। आधे रास्ते में वो बोला, मुझे नहीं मालूम कि दरवाजा खुला था या बंद था, मैं दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, मैंने नोट किया था, मैं बोला। फिर चुप्पी छा गई। हम गायकवाड़ के घर के बरामदे में पहुंच गए। बरामदे में जलती बत्ती की रोशनी किशोर के चेहरे पर पड़ी तो हमने देखा उसका चेहरा लाश की तरह सफेद था। क्या बात है किशोर, मैंने सक पका कर पूछा। उसने उत्तर न दिया, वो अपना सिर हिलाने लगा। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने हामी भरी और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं वो हकलाता वो बोला, दरअसल मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। क्या क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? क्या बात है, मैंने पूछा। मैं नशे में नहीं हूं, वो बोला, मैंने इतनी बियर नहीं पी थी कि मुझे नशा हो जाता। फिर देखो, वो बोला, मैं कतई नशे में नहीं हूं, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। मैं तब भी अपने होशो हवास में ही था जब थोड़ी देर पहले मैं हवेली की तरफ रवाना हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हवेली के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था तो एकाएक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जैसे वातावरण की एक हवा एकाएक भारी उठी थी और मुझे वापस धकेलने लगी थी। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने तक वो अदृश्य व्यवधान इतना प्रबल हो उठा था कि मुझे लगने लगा था कि अब मैं एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सामने एक अदृश्य दीवार आकर खड़ी हुई है और वो दीवार न केवल मेरा रास्ता रोक रही है बल्कि मुझे जबरन पीछे धकेल रही है। मैं भयभीत हो उठा था और उल्टे पांव वापस आ गया था। पता नहीं वो क्या लीला थी, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तुम्हारा चाचा, मैंने कहना चाहा। जहन्नुम में जाए मेरा चाचा, वो भड़क कर बोला, भगवान करे वो सीढ़ियों में लुढ़के और उसकी गर्दन टूट जाए। उसी समय गायकवाड़ की बैठक में लगे घड़ियाल ने 12 बजाए। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ियाल की टन टन किशोर के कथन का अनुमोदन कर रही हो। हम सब बेचैनी अनुभव करने लगे थे, किसी का भी कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हम सब सोने चले गए। अगली सुबह जोरों से दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज सुनकर हमारी नींद खुली। गायकवाड़ ने जाकर दरवाजा खोला। मैं और किशोर भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे पर बदहवास राजा साहब की नौकरानी मालती खड़ी हुई थी। राजा साहब की मौत हो गई है, वो दरवाजा खुलते ही आर्तनाद करती हुई बोली, हवेली में हादसा हो गया है। वो बहरी थी इसलिए उसे कुछ पूछने की कोशिश करना बेकार था। हम दौड़े दौड़े हवेली में पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ था। गायकवाड़ के घर की ओर भागते समय मालती ही उसे खुला छोड़ गई थी। हम सहमे से भीतर दाखिल हुए। सीढ़ियों के दहाने के पास राजा साहब की लाश पड़ी हुई थी। उनके सिर के आसपास खून का तालाब सा बन गया था। लाश की हालत ही बता रही थी कि राजा साहब की गर्दन टूट गई थी। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर राहदारी में बिछे कालीन का एक कोना ऊपर उठा हुआ था। राहदारी में रोशनी तो थी ही नहीं, लगता था अंधकार में कालीन के ऊपर उठे हुए कोने से उनका पांव उलझा था, वो अपना संतुलन खो बैठे थे और सीढ़ियों से लुढ़कते नीचे आ गिरे थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अपनी मौत के बाद भी उनमें समय की पाबंदी की वो बानगी दिखाई दे रही थी जिसके लिए वो अपनी जिंदगी में मशहूर रहे थे। उनके दाएं हाथ में उनकी पॉकेट वॉच दबी हुई थी। जो घड़ी वो अपनी कलाई पर बांधे हुए थे वो उनके गिरने के समय कहीं टकराकर चकनाचूर हो गई थी और रुक गई थी। उसी की सहायता से उस दुर्घटना का सही समय जाना गया। घड़ी में 12 बजने में कुछ सेकंड कम का समय दिखाई दे रहा था। वो एन वही वक्त था जब किशोर ने राजा साहब के मौत की कामना की थी। प्रोफेसर वाजपेयी चुप हो गया। कितनी देर कोई कुछ नहीं बोला। श्रोताओं पर उस कहानी की बड़ी सीमित प्रतिक्रिया हुई थी। जो लोग भूतों को मानते थे वो एक विजेता के से भाव से औरों को देख रहे थे, लेकिन मैं और अमीठिया अप्रभावित हो रहे थे। सबसे पहले मैं बोला, राजा साहब के हाथ में दबी जेब घड़ी, मैंने वाजपेयी से पूछा, क्या वो भी रुकी हुई थी? नहीं, वाजपेयी ने बोला, वो तो बदस्तूर चल रही थी। घड़ी क्योंकि राजा साहब की मुट्ठी में दबी हुई थी इसलिए कहीं टकरा नहीं पाई थी, लेकिन लगता था कि घड़ी को एक जोर का झटका लगा था और जिसकी वजह से उसकी सुइयां हिल गई थी और घड़ी एकदम आधा घंटा आगे हो गई थी। मैं बोला, किशोर को क्या हुआ? अमिठिया ने पूछा। वो बेचारा बहुत घबराया, वाजपेयी ने बताया, इसलिए नहीं क्योंकि उसके चाचा की मौत हो गई थी। अपने चाचा से तो उसे कोई मोहब्बत थी ही नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके चाचा की मौत से उसकी इस धारणा की पुष्टि कर दी थी कि पिछली रात हवेली के वातावरण में किसी अलौकिक शक्ति का वास था। वाजपेयी तनिक उदास ढंग से मुस्कुराया। मेरी बाद में उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, वो रविवार को जा तो नहीं पाया था, उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी, लेकिन अपने चाचा की जायदाद वगैरह संभालने के सिलसिले में वो इतना व्यस्त रहा था कि मुझसे मिल ही नहीं पाया। बाद में मुझे गायकवाड़ की एक चिट्ठी से खबर मिली थी कि किशोर एक विमान दुर्घटना में मारा गया था। ओह, डॉक्टर गोस्वामी बोला, मुझे पूरी उम्मीद थी कि किशोर का कोई ऐसा ही अंजाम हुआ होगा। आपको किशोर की मौत की उम्मीद थी? प्रोफेसर वाजपेयी हैरानी से बोला। हाँ, डॉक्टर गोस्वामी बोला, उम्मीद क्या थी, पूरा विश्वास था। खुदाई इंसाफ ऐसा ही होता है। किशोर को एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति हुई थी, फिर उस अलौकिक शक्ति ने काबू में करके उससे बरबस अपने चाचा की मौत की कामना करवाई थी। न केवल किशोर की वो कामना तुरंत पूरी हुई, बल्कि उसकी चाचा की मौत ऐन उसी ढंग से हुई जिससे कि उसने कामना की थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जाहिर होता है कि जो कुछ हुआ वो एक पूर्व निर्धारित ढंग से हुआ। किशोर उस वक्त एक ऐसी मानसिक स्थिति में था जिसमें आदमी जिस चीज की कामना करता है उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होती है। ये ईश्वर से वर मांगने जैसा काम है। उस वक्त किशोर किसी और चीज की भी कामना करता तो उसे वो शायद जरूर मिल जाती। ऐसी बातों पर हमारे पुराणों में और दंत कथाओं में आम जिक्र आता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब कोई अलौकिक शक्ति उसके दाएं होती है और उसकी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इच्छा की पूर्ति का कारण बनती है। लेकिन अगर वो इच्छा भली भली होती है तो आदमी फलता फूलता है, अगर वो इच्छा बुरी होती है तो जैसे कि किशोर के सिलसिले में थी, तो आदमी का किसी न किसी रूप में भारी अहित जरूर होता है। वो भारी अहित उसके सर्वनाश की, उसकी मौत की कैसी भी सूरत अख्तियार कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो अलौकिक शक्तियां पहले उसका पक्ष लेती हैं, अगर उससे कोई गलत काम करवाया जाता है तो काम तो जरूर होता है, लेकिन फिर वही शक्ति उसके खिलाफ हो जाती है और फिर उसका वैसा ही अंजाम करने में साधन बनती है जैसे अंजाम की कामना उसने किसी और के लिए की होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिन अलौकिक शक्तियों से राजा साहब की जान ली गई थी वो किशोर की जान लिए बिना मानने वाली नहीं थी। बकवास, अमीठिया मुंह बिगाड़ कर बोला, वो लड़का प्लेन क्रैश में मरा, हजारों लोग प्लेन क्रैश में मरते हैं, इसमें अलौकिक शक्ति कहां से आ गई? उसका चाचा सीढ़ियों से लुढ़का और खोपड़ी तुड़वाकर गर्दन तुड़वाकर मर गया। ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप कहते हैं क्योंकि ठीक उसी समय उसके भतीजे ने उसके मौत की कामना की थी वो इसलिए मर गया। मैं कहता हूं कि ये बकवास है। ये महज एक इत्तेफाक था कि गायकवाड़ के घर की घड़ी राजा साहब की घड़ियों से एकदम मिली हुई थी। जिंदगी में इससे भी बड़े, इससे भी अनोखे इत्तेफाक होते हैं। असल में किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना एक बार नहीं, जिंदगी में सैकड़ों हजारों बार की होगी। ये बात स्वाभाविक भी थी। आखिर उसका चाचा एक रईस आदमी था, वो उसका वारिस भी था और उसे नापसंद था। उसकी जगह आप होते तो क्या आप ऐसी आदमी की मौत की कामना नहीं करते? इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक था कि जब उस रोज किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना की तो उसका चाचा मर गया। क्या ये भी इत्तेफाक है? वाजपेयी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला कि किशोर ने अपने सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई महसूस की थी जो न केवल उसके आगे बढ़ने से रोक रही थी बल्कि उसको वापस धकेल भी रही थी। वो जरूर किशोर की घड़ी हुई कहानी थी, अमिठिया दृढ़ स्वर में बोला, जो किशोर ने आप लोगों को सुनाई थी। किशोर ने आपको एक बात सुनाई जिस पर आपने आंख बंद कर विश्वास कर लिया। वो लड़का उस रात घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ये कहानी गढ़कर सुना दी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घर में घुसने से रोक रही है। शायद उसे भय था कि अगर वो घर में घुसा तो उसका चाचा उसे इस बात पर तगड़ी डांट लगाएगा कि उसने आधी रात को राइफल में से गोली चलाई क्यों। तुम्हारा क्या ख्याल है पाठक? मैं दबे स्वर में बोला, किशोर की प्लेन क्रैश में मौत को इत्तेफाक मान सकता हूं, लेकिन मैं उसके चाचा की मौत को इत्तेफाक नहीं मानता। डॉक्टर गोस्वामी ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। उसकी निगाह में मैं उसकी पूरी नहीं तो आधी बात तो मैं मान ही रहा था। क्यों, अमेठिया आंखें निकालता हुआ बोला, चाचा की मौत को इत्तेफाक क्यों नहीं मानते तुम? एक आदमी अंधेरे में कालीन के एक उठे हुए किनारे में पांव उलझ पड़ता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है, इसमें असाधारण बात क्या है? पहले तो यह असाधारण बात है कि उसने सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी, मैं बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो क्यों नीचे जाना चाहता था? मुझे क्या पता वो क्यों नीचे जाना चाहता था, अमिटिया बोला। हजार वजह हो सकती है इस बात की। शायद उसे नींद ना आ रही हो, वो नीचे जाकर टहलना चाहता हो, शायद उसे भूख लगी हो और वो किचन में जाकर कुछ खाना चाहता हो, शायद वो नीचे से पढ़ने के लिए कोई किताब लाना चाहता हो। कितनी ही वजह हो सकती है, ये निहायत ही बेमानी सवाल है तुम्हारा। और वो अपनी पॉकेट वॉच नीचे अपने साथ क्यों ले जा रहा था? वाजपेयी ने खुद बताकर कहा था कि बूढ़े की आदत थी कि वो दो घड़ियां रखने की। वो अपनी कलाई घड़ी को अक्सर पॉकेट वॉच से मिलाकर रखता था। देखो, मैं गंभीरता से बोला, जब कोई आदमी दो घड़ियां रखता है तो एक घड़ी में वक्त देखने के बाद दूसरी घड़ी पर निगाह जरूर डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेडियो स्टेशन या रेलवे स्टेशन या किसी घंटाघर के पास से गुजरते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी कलाई घड़ी के टाइम का मिलान वहां लगी घड़ी से करने लगते हैं, चाहे आपने केवल एक मिनट पहले रेडियो या टेलीविजन से घड़ी मिलाई हो। लेकिन किशोर के चाचा की कलाई पर घड़ी बंदी होने के बावजूद उनका पॉकेट वॉच को भी उसके साथ नीचे ले जाने का मतलब कुछ और था, और वो एक ही मतलब हो सकता है। क्या? वो नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में वक्त देखना चाहता था। क्यों, अमिठिया झल्लाकर बोला, क्यों? दो घड़ियां तो उसके पास पहले से ही थी, फिर नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर टाइम देखने का क्या मतलब? क्योंकि वो दो घड़ियां उस वक्त राजा साहब को सही टाइम बताने में असमर्थ थी। क्यों असमर्थ थी? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न टाइम दिखा रही थी। अमिठिया उलझनपूर्ण नेत्रों से मेरा मुंह देखने लगा। प्रत्यक्ष था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब ये बकवास मत करना, वो बोला, कि वो अलौकिक शक्ति किशोर को हवेली के दरवाजे से वापस धकेल रही थी, उसने घड़ियों के वक्त भी तब्दील कर दिए थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जरा समझने की कोशिश करो कि असल में क्या हुआ होगा। आप आधी रात को एकाएक नींद से जागते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले आप तुरंत प्रथम उपलब्ध घड़ी देखकर जानना चाहते हैं कि वक्त क्या हुआ है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, हर कोई यही करता है। राजा साहब ने भी यही किया। आधी रात को उनकी नींद खुली, उन्होंने भी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो देखा कि मान लो 11:45 बजे थे। फिर आदतन उन्होंने मेज पर पड़ी पॉकेट वॉच उठाई और उसमें टाइम देखा या सुना, वो घड़ी 12:45 बजा रही थी। ऐसे कैसे हुआ? अभी कुछ ही घंटे पहले उन्होंने दोनों घड़ियों को नीचे डाइनिंग हॉल में लगी बिजली की घड़ी से मिलाया था, फिर भी एक घड़ी दूसरी घड़ी से लगभग आधा घंटा आगे थी। ठीक वक्त कौन सी घड़ी दे रही थी? उस वक्त वास्तव में कितने बजे थे, यह जानने का उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन वो निकल नहीं पाई होगी। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया है कि घड़ियों के मामले में राजा साहब कितने सनकी आदमी थे। ये बात उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही होगी कि कौन सी घड़ी गलत टाइम बता रही है। अंत में काफी करवटें बदलने के बाद उन्होंने महसूस किया होगा कि जब तक ये वो बात जान न लेंगे उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। सही टाइम जानने का यही तरीका था कि वो नीचे डाइनिंग हॉल में जाते और दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में अपना सही टाइम देकर आते। मैं एक क्षण ठिठका और फिर वाजपेयी की तरफ मुड़ा। राजा साहब की सीढ़ियों से नीचे गिरने के झटके से उनकी मुट्ठी में दबी पॉकेट वॉच एक घंटा आगे नहीं हो सकती थी। जिस घड़ी की सुइयां इतनी ढीली हों कि वो एक झटके से एक घंटा आगे हो सकती हैं, उस घड़ी को बढ़िया घड़ी नहीं कहा जा सकता। और ऐसी घड़ी की राजा साहब जैसे सनक की हद तक समय के पाबंदी आदमी के पास होने की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। इससे एक ही मतलब निकलता है कि पॉकेट वॉच के समय को एक घंटा आगे दुर्घटना से पहले बढ़ाया गया था। ये काम राजा साहब खुद तो हरगिज ही नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई आदमी ये काम कर सकता था तो वो था उनका भतीजा किशोर। किशोर की सदा की रूटीन थी कि वो राजा साहब को उनकी कोट की जेब से निकालकर पॉकेट वॉच पकड़ाया करता था। किशोर ने ऐसा क्यों किया, अमिठिया ने पूछा। ऐसा गलती से हो गया था या उसने जानबूझकर राजा साहब को परेशान करने के लिए किया था? उसने राजा साहब को परेशान करने के लिए नहीं, मैंने एक शर्त ठिठक कर बोला, उनका कत्ल करने के लिए किया था बाबा। सब लोग हक्के बक्के में से मेरा मुंह देखने लगे। इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं कि राजा साहब की हत्या हुई थी। मैं स्थिति का आनंद लेता हुआ बोला, रात किशोर ने अपने चाचा की पॉकेट वॉच को 1 घंटा आगे कर दिया और उन्हें सोने की तैयारी करता छोड़कर उनके बेडरूम से विदा हो गया। बाहर राहदारी में बिछे गलीचे का कोना उसने सीढ़ियों के सामने जानबूझकर इस प्रकार उठा दिया कि अगर अंधेरे में कोई सीढ़ियों की तरफ बढ़ता तो उसके पांव उसमें उलझकर वो बंदा गिर जाता। लेकिन अमिठिया उलझनपूर्ण स्वर में बोला, किशोर को यह कैसे मालूम था कि आधी रात को राजा साहब की नींद जरूर खुलेगी? उसने इसलिए तो एन राजा साहब की खिड़की के नीचे खड़े होकर राइफल चलाई थी ताकि गोली की आवाज सुनकर राजा साहब की नींद खुल जाए। अमिठिया चुप हो गया, वो बेहद प्रभावित दिखाई देने लगा था। लेकिन पाठक साहब, प्रोफेसर वाजपेयी बोला, आखिर किशोर ने वो कहानी क्यों गढ़ी थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हवेली में दाखिल होने से रोक रही थी? उसे उसे क्या हासिल था? आखिर वो उस रात हवेली में दाखिल क्यों नहीं होना चाहता था? क्योंकि उसे भय था कि अगर वो उस नाजुक घड़ी में हवेली में दाखिल होता तो उसका चाचा, जो राइफल चलने की आवाज सुनकर जाग चुका था और तब किसी भी क्षण नीचे की तरफ रवाना हो सकता था, उसके आगमन की आहट सुनता और फिर खुद नीचे आने की जहमत गवारा करने के स्थान पर उसी को आवाज देकर पूछ लेता कि डाइनिंग रूम में लगी बिजली की घड़ी में कितने बजे थे। उस सूरत में तो वो अपने बेडरूम से बाहर निकलता और न कालीन के उठे हुए कोने में पांव उलझ जाने की वजह से सीढ़ियों से लुढ़ककर अपनी जान से हाथ धोता। तब किशोर के सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। आप ठीक कह रहे हैं, वाजपेयी बोला। वातावरण में सन्नाटा छा गया। एकाएक क्लब की दीवार पर लगा घड़ियाल टन टन करके बजने लगा। सबकी निगाहें मशीन की तरह अपनी अपनी कलाइयों पर बंधी घड़ियों की तरफ उठ गई। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अनजाने में वो सब क्या कर रहे थे तो वो एकाएक सब हंसने लगे। देखा, मैं विजेता के स्वर में बोला।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।